आया भाई आया। सलामुन अलैकुम।
अलैकुम सलाम, कैसे हैं आप? हाजी साहब घर पर हैं?
नहीं, घर पर नहीं है। आप बताएं क्या काम है, मैं बता दूंगा उन्हें।
उनके लिए पैगाम लाया हूं। और क्या हाजिया साहिबा घर पर हैं?
नहीं, हाजी और हाजिया साहिबा तो यहाँ से चले गए हैं, गांव के एक मकान में मुंतकिल हो गए हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनका एड्रेस दे सकता हूँ।
मैं जंगी गुमशुदगान के दफ्तर से आया हूँ।
उनके बेटे के बारे में कुछ पता चला है?
क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा कि इतने साल बाद हाजी साहब को कैसे ये खबर पहुँचाऊँ। अगरचे वो दोनों हमेशा किसी खबर के मुंतजर रहते हैं। बहरहाल अगर आप एड्रेस दे दें तो मेहरबानी होगी।
आप कुछ देर यहाँ इंतजार करें, मैं बस अभी आता हूँ।
शुक्रिया।
कौन है? रहीम साहब, कुछ हुआ है क्या?
जंगी गुमशुदगान के दफ्तर से आए।
हाजी साहब के बेटे के बारे में कोई खबर लाए हैं?
जरूर, ऐसा ही है।
हाजी मूसवी साहब से कहें कि ना मानने में मेरी भी सलाह है और शहर के इमाम जुमा की हैसियत से उनके लिए भी ये बेहतर।
हाजी साहब, तमाम उमूर पर खूब गौर किया गया है, आप ज़्यादा सख्ती ना करें।
आपकी मेहरबानी है, जहमत की जो यहाँ तक तशरीफ लाए। मैं आपकी खिदमत में दो बातें अर्ज़ करता हूँ, उनको हाजी साहब तक पहुँचाएँ। पहली बात ये कि अगर हम मान जाएँ और वहाँ जाकर ठहरें तो मेरे बेटे की कंपनी के कर्ज खा ये बात कहेंगे कि हमने एक सस्ता घर बेचा और बैतुल माल के पैसों से बड़ा घर खरीदा।
हाजी साहब, बैतुल माल तो नहीं है, ये हाजी मूसवी साहब की अपनी जायदाद
है। मैं जानता हूँ, मैं कर्ज खाहों के जाविये निगाह से कह रहा हूँ। इन बेचारों को नुकसान हुआ है, उनका सुकून छिन गया है, शायद हर किस्म की बात पर वो यकीन कर लें। दूसरे ये कि अगर कर्ज खाहों को पता चला कि शहर के इमाम जुमा ने अपना घर हमें दिया है तो मुमकिन है उनसे लोगों की मोहब्बत और अकीदत कम हो जाए, जिसकी वजह से उलमा के तबके को नुकसान होगा। खुद ही फैसला करें क्या ये मुनासिब होगा कि हम उस घर में जाएं।
क्या अर्ज करूं?
मेरी तरफ से हाजी साहब का शुक्रिया अदा करें और मेरा सलाम उन्हें पहुंचाएं।
जी अच्छा, माफ कीजिएगा।
खुदा हाफिज।
सलाम हाजी साहब।
सलामुन अलैकुम हाजी साहब।
अलैकुम सलाम।
अलैकुम सलाम।
सलामुन अलैकुम।
तहकीकाती गिरोह के अफराद कह रहे थे कि उनका नाम शोहदाए गुमनाम की लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन आखिरी लम्हात में एक प्लाक मिला और पता चला कि यह प्लाक जनाब मुर्तजा का है।
खुदा तमाम मुंतसिर माओं पर रहम करे और इनायत करे कि उनकी औलादों की यादगारें उन्हें लौटा दे।
आमीन।
इस शहीद की बरकत से इंशाल्लाह उसके भाई मोहम्मद हुसैन का मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमें क्या करना होगा?
आपको कुछ नहीं करना है हाजी साहब, आप हमारे लिए इतने अजीज हैं कि सारा काम हम खुद ही कर लेंगे।
खुदा आपको जजाए खैर दे, लेकिन मैं मुनासिब समझता हूँ कि इन कामों को मैं खुद ही अंजाम दूँ।
मेहरबानी करके एक दफ़ा तहकीकाती दफ्तर आ जाएं, वहाँ पर हम जनाजे के बारे में तफसील बता देंगे।
हाजी साहब।
फरमाइए बेगम।
जरा एक मिनट के लिए बाहर आएंगे?
आ जाइए बेगम, आ जाइए।
सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम।
खुश आमदीद, आपको निकाह की तकरीब में ले जाने आई हूँ। क्या मुर्तजा का पता चल गया?
आपकी आंखें रोशन हो।
मैं अगर अपनी जमीनों को बेचना चाहूं तो इनका कितना पैसा मिलेगा?
फोन पर भी आपको बताया था कि ये इख्तलाफी जमीन है, आसानी से नहीं बिकेगी।
इसलिए कहा था कि आप तशरीफ लाएं और इस कागज को देखकर जान लें कि इन जमीनों में कोई मसला नहीं है।
जो मसला आपके जहन में है वो जमीन के हकीकी मसले से बहुत मुख्तलिफ है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकती।
तो आप फरमाइए कि इन जमीनों का असल मसला क्या है।
ये जमीनें और बागात जितने सालों से हाजी शहीदी साहब के हाथ में हैं, यतीम बच्चों के लिए रोजी रोटी यहीं से आती रही है। यहाँ तक कि कितने गरीब लोगों के इलाज मुआलजे का पैसा यहाँ से आता है। कौन आखिर इंसान इनको खरीद कर इन बंदगाने खुदा का रिज्क काटने पर राजी होगा। मगर ये कुछ मफाद परस्त अफराद दूसरे इलाकों से आ जाएं, उनको भी जब हकीकत का पता चलेगा तो वो भी पीछे हट जाएंगे। उनको ये सौदा रास नहीं आएगा और वो भी दुम दबाकर भाग जाएंगे।
आप परेशान ना हो, इसका गुनाह मेरे सर, आखिरत में भी खुद ही जवाब दूंगी।
आप भी क्या कह रही हैं अंसारी साहिबा, यहाँ आने से पहले मैं अपनी अंगूठी घुमाना चाहता था, याद आया कि हाजी साहब ने मना फरमाया। मैंने भी सोचा ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। अब सोच रहा हूँ कि अगर अंगूठी घुमाता भी तो वो नतीजा गलत देती। मेरी मानिए तो इन जमीनों को बेचने का ख्याल जहन से निकाल दीजिए।
आप भी कान खोल कर सुन दे, मैं इन जमीनों को पूरी उम्र अपने पास रखूंगी और मरने से पहले वसीयत करूंगी कि मुझे इन्हीं के दरमियान दफन करे, लेकिन हाजी शहीदी को वापस नहीं दूंगी।
आपका अपना माल है, जो चाहे करें, मैंने अपनी राय बता दी। खुदा हाफिज।
क्या हुआ, बेच दिया?
नहीं बेचा बेटी, आओ तहखाने में चल के सामान ठीक करते हैं।
छोड़े अम्मी, हौसला नहीं है।
क्यों हौसला नहीं है?
इन जमीनों का आप कुछ नहीं कर सकते।
बेटा वो जमीनें मेरी हैं। तुमने देखा ना कि हाजी साहब ने खाली भी कर दी और माजरत खाही भी की।
अबू जान जो कर सकते थे उन्होंने किया। अगर ये जमीनें नाना जान के ना होती तो वो वक्फ ना करते।
मैं इन जमीनों को बेच के तुम्हारा कर्जा चुका दूंगी। अब तुम जैसा भी मेरे बारे में सोचती हो सोचो। हेलो, ठीक है मैं अभी पहुंचती हूँ। यही है, यही वो नंबर है जिससे मोहम्मद हुसैन को फोन किया गया है।
अब तुम क्या करना चाहती हो?
मुझे लगता है इसी फोन नंबर के जरिए उसका सुराग लगा सकूंगी।
ठीक है, तो अब जा सकते हैं।
सुनो तुम जाओ, मैं यहाँ रुक के आसपास जरा चेक करती हूँ।
माफ करना, मैं तुम्हारे साथ रुक नहीं सकती, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है।
कोई बात नहीं,
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
मुस्लिम, ना करो ना करो।
क्या हुआ?
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अंदर जाकर क्या कहेंगे।
कह देंगे बुखार की वजह से अस्पताल में है।
यही तो, जो भी किसी की मौत की खबर देना चाहता है यही जुमला कहता है। पहले यही कहते हैं कि आपके बच्चे को मामूली बुखार है।
मेरे भाई बरात अली को कैंसर तो नहीं था कि अली चचा उसके मरने की खबर के मुंतजिर हों।
बहरहाल मैं नहीं जानता, हर कोई अस्पताल का नाम सुनकर घबरा जाता है।
तो तुम बताओ क्या कहें।
सलाम। अगर राय हल नहीं बता सकते तो इतराज मत करो।
मैं खुद ही एक अच्छी सी तमहीद बांधकर उनसे कह दूंगा, तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
तमहीद की जरूरत नहीं है।
सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम। वाह 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 वाह, हमारी खुशकिस्मती देखिए, उलमा हमारे दरवाजे पर आए हैं। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या?
अहमद अली साहब, क्या हमेशा किसी बात के लिए आपके घर आना चाहिए?
दहकानी ने आपके लिए घर ढूंढा?
जी, आपके सिफारिश से उन्होंने एक घर ढूंढ लिया है।
तो क्या आप सब मिलकर मेरा शुक्रिया अदा करने आए हैं?
हकीकत ये है हाजी अहमद अली साहब की, आप जानते हैं ये जिंदगी इम्तिहान के लिए बनाई गई है।
बिल्कुल।
अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हम आपका इम्तिहान लेते हैं माल और औलाद के जरिए। औलाद के जरिए?
शेख मुस्लिम साहब, बहस को पेचीदा ना करिए। बरात अली को कुछ हुआ है क्या?
हुआ तो है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना आप सोच रहे हैं।
साफ साफ बताओ क्या हुआ है, बरात अली पर क्या मुसीबत?
हल्का सा बुखार हुआ है।
तुम्हें बताया था ना कि वो मरीज है, नहीं जानते थे?
मेरा मतलब जिस्मानी बीमारी है, थोड़ा सा बुखार है। डॉक्टर ने कहा है अस्पताल में रहेगा, ठीक हो जाएगा।
इस वक्त वो भर्ती है अस्पताल में?
जी।
उसी बनी हाशिम अस्पताल में?
जी जी।
तुम लोग इसलिए आए हो कि मैं तुम्हारे साथ अयादत के लिए चलूं?
जी।
बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मुस्लिम। तुम अभी बाप नहीं बने जो मेरी बात को समझ सको। औलाद औलाद ही होती है, भले ही वो गुमराह हो। तुम लोग अंदर नहीं आओगे?
जी नहीं, शुक्रिया आपका।
ठीक है,
आइए।
चलिए।
हेलो सलाम। नहीं, अभी नतीजे पर नहीं पहुंची हूँ, कुछ सुराग ढूंढ रही हूँ। ये इलाका मेरे लिए बहुत जाना पहचाना है। ठीक है, अभी फोन करती हूँ।
स-
सलाम हुदा बेटी।
वालेकुम सलाम।
कैसी हो बेटी?
आप कैसी हैं?
यहाँ क्यों बैठी हो बेटी, आओ घर चलते हैं।
आप ठीक हैं आंटी? माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं था।
चलो घर चलते हैं।
बहुत
चाय पानी कुछ?
शुक्रिया, मुझे बहुत काम है।
यहाँ बैठना अच्छा नहीं है।
बहुत शुक्रिया।
अंसारी साहबा। सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम।
आप ठीक हैं? हाजी साहब नहीं है, काश आने से पहले एक फोन कर लेती। आइए, आजकल वो बहुत मसरूफ रहते हैं, माहे मुहर्रम की तैयारी में मसरूफ हैं। आइए, माजरत के साथ मैं लाइट जलाता हूँ।
तुम कहाँ से जानते थे कि मोहम्मद हुसैन की गिरफ्तारी का हुक्म हुआ है?
मैं?
हाँ तुम। तुमने इस खातिर की पहचाने न जाओ और कोई निशाने न छोड़ जाओ घर के नजदीक पब्लिक बूथ से फोन किया। दाऊद साहब कहाँ हैं?
इन्हीं कामों में मसरूफ हैं।
अभी कहाँ हैं?
मस्जिद में। अंसारी साहिबा,
परचम वहां रख दो, उस कोने में, जल्दी अंदर ले आओ, जल्दी करो, जल्दी करो, उसे अंदर ले जाओ, तार में ना फंसे। ठीक है, देखो ऐसे नहीं रखो, तुम ऐसे रखो, भारी वाला मत उठाओ, लाओ मुझे दो, इधर आओ, इसे अंदर ले जाओ, भारी वाला मत उठाना। अरे देख नहीं रहे, वो तार में फंसा हुआ है, जाओ निकालो उसे।
सलाम।
सलाम जोरा।
यहाँ आओगी नहीं, तुमसे बात करनी है।
अभी तो नहीं आ सकती, तुम्हें क्या काम है?
आओ बैठकर देखते हैं कोई हल निकलता है या नहीं।
अब तक इतना सोचने से कोई हल निकला है क्या?
मैं अगर आ सकती तो खुद ही आ जाती ना।
तुमने ही तो कहा था कि दाऊद साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।
दाऊद भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी उनकी मदद करनी होगी।
अच्छा ठीक है, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ।
अंसारी साहिबा।
सलाम।
सलाम, कोई काम था मुझसे?
नहीं, मोहम्मद हुसैन को देखने आई थी।
ठीक है, मैं कह देता हूँ कि मुलाकात का
बंदोबस्त करूँ। शुक्रिया, एक काम पेश आ गया है, बाद में आ जाऊंगी। खुदा हाफिज।
चलो।
इसलिए तो इतनी आफतें मुझ पर नाजिल हुई और मेरा ये हाल हो गया। तुमने इतने गुनाह किए, इतनी मासियत की, इतना उन अख्तदार की तरफ पुष्ट किया कि आखिरकार ये मुसीबत नाजिल हुई, ये तो मानते हो ना? शाबाश। खुदा तुम्हारा भला करे कि मेरी बात की लाज रखी तुमने। मैं कहता हूँ कि जब तक तुम उस अकबर गाफिल को नहीं में जवाब नहीं दोगे, जितना भी इलाज कराओ और ड्रिपें चढ़ाओ, ठीक नहीं होने वाले। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या मेरी बात मानकर उसको ना कह दो, या इसी तरह बुखार में तपते रहो और ये हालत जारी रहेगी।
जरा बुखार ज़्यादा है,
45 दर्जे बुखार है। लेकिन
40 दर्जे?
चलो 40 ही सही, लेकिन ये कयामत की तपती हुई गर्मी के सामने कुछ भी नहीं है जो तुम्हें झेलनी पड़ेगी। ये तो कुछ भी नहीं है, लॉलीपॉप जैसा है।
अहमद अली साहब, ये आपके साहबजादे हैं, थोड़ा इनको दिलासा दे देंगे तो आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा?
मेरा बेटा है, इसीलिए तो हमदर्दी में ये बातें कह रहा हूँ। हाँ शेख, मैं तुम्हारे कुर्बान जाऊँ, बीमारी इसी का नाम है। इस वक्त जब ये बीमारी की हालत में है, अगर तौबा करेगा तो बख्श दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस फुर्सत से इस्तेफादा करके तौबा करे। तौबा करो, अगर ठीक नहीं हुए, अगर सेहतमंद नहीं हुए तो मेरा नाम बदल देना। मैं कहता हूँ बस इतना ही हौसला दे सकता हूँ मैं। तुम बाहर आओ, कुछ काम है तुमसे, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। खुदा शिफा दे। खुदा हाफिज।
खुदा
हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
अरे शेख मुस्लिम, बाहर आओ, मैंने कहा ना बात करनी है।
ये क्या है?
ये नोट है। शेख साहब एक जहमत करो, ये जो बाहर फ्रूट की दुकान है ना, वहाँ से एक मौसमी फल खरीदो, उसका जूस निकाल कर गिलास में डालो और उसके हलक में डाल दो ताकि कुछ ताकत
मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने दोस्त पर खर्च कर सकूं। इसके अलावा इतनी जहमत करने के बजाय बेहतर ये होगा कि सामने की दुकान से मैं कोई तैयार जूस खरीद लूं।
खुदा के बंदे, पहले ही बहुत बड़ा अरसा गुजर गया कि तुमने वजीफा नहीं लिया है, पैसा काम आएगा। दूसरा ये कि ताज़ा जूस इन डिब्बे वाले जूसों के साथ काबिल मवाजना नहीं है। और हाँ, उसको मालूम ना हो कि मैंने खरीदवाया है। खुदा हाफिज।
तुम्हारा शुक्रिया मुस्लिम, तुम्हें कहाँ से पता चला कि मुझे ताज़ा जूस पसंद है?
इंटरनेट पर सर्च किया कि बरात अली को कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं।
भाई मुस्लिम, जरा इधर आना।
कोई बात
कुछ हुआ है क्या?
डॉक्टर ने कहा है कोई परेशानी नहीं है।
मुझे सही सही बताओ,
कुछ नहीं हुआ,
गड़बड़ नहीं है तो बुखार इतना ऊपर नीचे क्यों हो रहा है?
शायद उनका थर्मामीटर खराब हो गया हो।
अरे नहीं, थर्मामीटर खराब थोड़ी होता है। चलो तुम लोग आओ मेरे साथ।
अगर कोई संजीदा मसला नहीं है तो हमें बाहर किस लिए लेकर जा रहे हो?
असल में मेरे जहन में एक आइडिया आया है, आपको भी बताना चाहता हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरे पास इब्ने सीना की दास्तानों की एक किताब थी जो शेखो रईस की तिब्बी महारतों के बारे में थी। एक दास्तान में है कि इब्ने सीना एक मरीज के पास जिसको सख्त बुखार था, इब्ने सीना है और उसकी नब्ज पकड़ता है और मुख्तलिफ ममालिक के नाम लेना शुरू कर देता है। जब एक खास मुल्क पर पहुँचता है तो मरीज की नब्ज तेजी से फड़कने लगती है, फिर एक खास इलाके, खास मोहल्ले और खास शख्स तक पहुँचता है। देखता है कि मरीज की नब्ज तेजी से फड़क रही है। मरीज के घर वालों से कहता है कि आप लोग जाके अपने बेटे के लिए फला शख्स की बेटी का रिश्ता मांगे ताकि उनका बुखार उतर जाए।
यानी कि एक ऐसा घर है जो बरात अली की नब्ज को ऊपर नीचे कर सकता है।
आप लोग शोर ना मचाएं, यहाँ से तशरीफ ले जाएं।
जी,
जी, जी, चलो चलो।
अच्छा भाई, क्या करना चाहते हो? ये बताओ कि तुम्हें हाजरा साहिबा चाहिए या नहीं, क्या करना चाहते हो?
भाई मुस्लिम, अगर मुझे मेरी तकदीर का पता होता तो आज मेरी ये हालत ना होती।
मुझे ही देख लो, जब मैं मदरसे जाना चाहता था सब घर वाले मुखालिफ थे, सबका दिल चाहता था कि मैं मेडिकल को जारी रखूं और स्पेशलिस्ट बनूं, लेकिन उनसे बात की और सबको कायल कर दिया।
माशाल्लाह, आपके कायल करने की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर एक कौम को निजात दिलाना चाहेंगे तो पूरी दुनिया को कायल कर लेंगे।
नहीं, उसका कायल करने की ताकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे अपनी बात और अपने काम पर मुकम्मल यकीन था। मैं कहता हूँ, इंसान जब एक काम करना चाहे अगर उस पर पूरा यकीन रखे तो सबको कायल कर सकता है।
हाँ, अब तुम जो ये काम करना चाहते हो उस पर यकीन रखते हो? मेरी तरफ देखो, यकीन है?
खामोशी राजी होने की निशानी है। अगर हाजरा साहिबा राजी ना हुई तो किसी और से शादी कर लेगा।
ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे हाजरा के अलावा
बस करो, बस करो। तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। उठो।
कहाँ?
डॉक्टर शुजा के क्लिनिक।
मुझे तुम कहाँ ले जाना चाहते हो? मैं नहीं आ सकता।
परेशान ना हो बरात अली, जाके अकबर साहब से कहो कि हाजरा साहिबा से शादी करूंगा, नहीं तो दीवार तोड़ दूंगा।
ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? क्या जोर जबरदस्ती से किसी लड़की को अपनाया जा सकता है क्या?
अलबत्ता नर्स साहिबा, बात कुछ और है और मौजू काफी लंबा है, इसलिए अगर आप इजाजत दें तो हम चलते हैं।
जाने से पहले रिसेप्शन पे बिल अदा कर दें।
जी, अस्पताल हो और पहले पेमेंट ना हो।
हाँ जी अहमद अली, तुम हो कहाँ?
हाजी साहब आ गए?
हाँ, वो कब से मुंतजर हैं, बहुत इसरार किया तब अंदर आने को राजी हुए।
अच्छा किया, ये उनका अपना घर है। अब कहाँ हैं?
इस वक्त किताबें लेने गए हैं
ऊपर।
हाँ हाँ।
बहुत शुक्रिया बेटा अली रजा, ज्यादा वजनी तो नहीं है ना बेटा?
नहीं हाजी साहब।
सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम।
सलाम अलैकुम। हाजी साहब, अभी दो दिन पहले ही तो आपने ये दी थी, अब देखने आए कि कुछ कम तो नहीं हो गई।
आपने बशारतुल मुस्तफ़ा रशीउल मुर्तज़ा किताब तो नहीं देखी कहीं?
नहीं, ऐसी कोई किताब तो मेरी नज़रों से नहीं गुजरी।
खुदा की पनाह, खुदा की पनाह, जितना सोचता हूँ कि ये किताब किसको दी है याद नहीं आ रहा। अमानती किताबों की लिस्ट में भी नहीं थी ये।
आप फिक्र न करें, मैं खुद ही ढूंढ के निकाल लूंगा, आप तशरीफ रखें हाजी साहब।
नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिल जाएगी, कब से मुझे नज़र नहीं आ रही। कल रात को एक ख्वाब देखा तो इस किताब की याद आई, सोचा एक तबर्रुक है।
क्या लेथ प्रेस की थी?
हाँ, बेरूत में।
हाजी अहमद अली लीजिए।
शुक्रिया, शुक्रिया बेटे। ये लीजिए, ये लीजिए।
रजा अली बेटे आ जाओ।
जी।
हाजी साहब, कैसा ख्वाब था जिसने आपको इतना परेशान कर दिया? ये लीजिए, कुछ हुआ है क्या?
मुर्तजा को ढूंढ लिया गया है।
या पैगंबर,
उसके जनाजे के कामों के लिए जाना है।
अच्छा हाजी साहब, मैं समझता था कि आप इस खबर से खुश हो जाएंगे, परेशान क्यों हैं?
मैं हैरान हूँ कि इन हालात में क्यों ऐसा होना था।
कहाँ जा रहे हैं, तशरीफ रखिए ना।
नहीं, मुझे जाना होगा, जाके देखता हूँ कि क्या मोहम्मद हुसैन को भाई के जनाजे में शिरकत की इजाज़त मिलती है।
मै भी साथ चलता हूँ आपके।
नहीं, माजा नहीं आ जाएगी, आप जाएं। अल्लाह कहे, मैं रुखसत होना चाहता
हूँ। जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आइए। या अल्लाह, आइए। या अल्लाह, या अल्लाह,
या अल्लाह।
ये खबर किसने पहुँचाई?
जंगी गुमशुदगान की कमेटी ने।
माफ कीजिएगा जो पूछ रहा हूँ, क्या वो मुतमईन है कि वो मुर्तजा है?
जी, ये बात बाज मेडिकल टेस्ट के जरिए पता चली है, पता चला है कि वो मुर्तजा है। दरियाफ्त होने वाली हड्डियां।
माफ कीजिएगा, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। ये लीजिए।
बहुत शुक्रिया बेटा।
हाजिया खानम का इन हालात में ये खबर सुनकर क्या हाल होगा?
बेटे, बेखबरी जो है वो सबसे बुरी चीज है।
जनाजा कब उठेगा?
मैं ये जानना चाहता था कि क्या ऐसा कोई रास्ता है कि मोहम्मद हुसैन वक्ती तौर पर फौरन जेल से बाहर आ सके।
काजी ने अब तक तो इजाजत नहीं दी थी, पर अब कायदतन सूरत हाल बदल गई है।
तो मतलब रास्ता है। मैं चाहता हूँ इन चंद दिनों में, जब तक दफ्तर जनाजे की तारीख मुकर्रर करता है, ये बेटा अपनी माँ के पास रहे। मुर्तजा की खबर सुनने के बाद वो मोहम्मद हुसैन के लिए ज्यादा बेसब्र हो रही है।
जी हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा।
खुदा आपको जजाए खैर दे।
अलबत्ता हाजी साहब, मैं शर्मिंदा हूँ। अलबत्ता मैं जानता हूँ कि काजी उसी सूरत में मुआफ़कत करेंगे जब पुलिस हिफाजत में मोहम्मद हुसैन को तदफीन के मौके पर लाया जाए।
ये सूरत हाल तो कुछ बहुत अच्छी नहीं होगी।
क्या हुआ अबू जान?
कुछ नहीं, कहते हैं कि हथकड़ी और पुलिस के हमराह जनाजे में शिरकत कर सकता है।
क्या मतलब हथकड़ी में? इस तरह तो अम्मी जान की तबीयत तो और खराब हो जाएगी। सलाम, आप इस बुजुर्ग के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? क्या आप खुद हाजी साहब के मुरीदी का दावा नहीं करते थे?
वाहिदा बेटी, आओ चलो बेटी, चलें।
मैंने हाजी साहब से सब बातों की वजाहत कर दी है।
भला आपकी वजाहत हमारे किस काम की? इस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी इस शहर के लोगों के लिए वक्फ कर दी। इनका बेटा किसी एक्सीडेंट में नहीं मरा है जिनका जनाजा हो रहा हो, बल्कि हम लोगों के खातिर अपनी जान दी है कि हम खुशो खुर्रम रहे। क्या इसका सिला ये है कि उसका भाई हथकड़ी में उसके जनाजे में शरीक हो?
मेरी बेटी, इन बातों की इंस्पेक्टर साहब को वजाहत देने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अब्बू जान,
इंस्पेक्टर साहब जंग में मुर्तजा के साथ ही रहे हैं।
तुम्हें क्या काम है मुझे बताओ?
मुझे शहीदी साहब से एक मसले के बारे में मशवरा करना था।
तो फिर खुदा खैर करे।
आपने क्यों कभी दाऊद साहब से नहीं कहा कि मोहम्मद हुसैन के जामिन बन जाए?
हाजी साहब ने इजाजत नहीं दी।
उन्होंने कहा कि जरूर कोई मजबूरी होगी जो आगे नहीं आना चाहते। दाऊद साहब नेक आदमी हैं, शायद कोई हिकमत थी, शायद उनके हालात ठीक नहीं थे।
हाँ, जैसा कि वो परवाने की तरह बीवी के गिर्द घूमते हैं तो ये मेहरबानी बिला वजह नहीं होगी।
ऐसी बात मत करो, ना शुक्री की बात मत करो। इत्तेफाक से जोहरा के साथ उनका सुलूक इस बात का गवाह है कि वो कितने नेक आदमी हैं। उनकी जगह कोई भी और मर्द होता तो अब तक जाके दूसरी शादी कर चुका होता। हाजी साहब कहते हैं अगर कोई चीज़ उनकी आकबत बखैर कर सकती है तो यही बीवी की खिदमत है। जोहरा को उनसे बहुत लगाव है, सिर्फ रोज़मर्रा के कामों के लिए नहीं बल्कि उसकी सांस दाऊद के साथ जुड़ी हुई है।
अच्छा, इजाजत हो तो चलती हूँ।
कहाँ जा रही हो? तुम मशवरा करने नहीं आई थी?
पशिमान हो गई। अब हाजी साहब को जहमत देने की जरूरत नहीं। एक प्लान है, अगर वो कामयाब हो गया तो सारा कुछ रोजे अव्वल की तरह ठीक हो जाएगा।
अगर सब कुछ दोबारा पहले की तरह होना था तो खराब ही क्यों किया? खुद को इतना मत थकाओ। हाजी अब्दुल हुसैन को जिस रास्ते के सही होने का यकीन हो उससे वो वापस कभी नहीं पलटते।
मैं कौन होती हूँ उनको वापस लौटाने वाली? मैं तो खुद अपनी पिछली जिंदगी की तरफ लौटना चाहती हूँ। इंसान जो चाहता है हमेशा वही नहीं कर पाता। मैं कदम ब कदम वापस लौटना चाहती हूँ ताकि अपनी जिंदगी का असली रास्ता मुअय्यन कर सकूँ। अब इजाजत दें।
खुदा हाफिज।
अकबर साहब, आज मैं इस शेर का मतलब समझा कि इश्क को पहले तो बहुत आसान लगा लेकिन बाद में ये बहुत मुश्किल हो गया।
अगर इश्क पहले से ही शुरू ना हो तो बेहतर नहीं है?
मेरे भाई अकबर साहब को आखिरकार मसला समझाना है कि नहीं?
नहीं, मैं भी मुस्लिम के साथ मुवाफिक हूँ। अगर अपने ससुर के सामने जिसकी बेटी से भी शादी भी नहीं हुई है इश्क को आशिकी की बात करेगा तो वो कहेंगे कि लड़का कितना गुस्ताख है।
मेरे भाई, ये बातें उस वक्त की है जब इंसान पहली दफा रिश्ता मांगने जाता है। ये अकबर साहब तो बरात अली को बखूबी जानते हैं।
यार, मैं अकबर साहब के लिए पहली दफा रिश्ता मांगने वाले फर्ज से भी ज्यादा पराया हूँ।
यादश बखैर, मैं शादी करने से पहले 10 बार रिश्ता मांगने के लिए गया था।
माशाल्लाह, शर्म नहीं आई तुम्हें?
नहीं, कैसी शर्म।
मुझे अगर 3 दफा मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा।
बात ये थी कि मेरे भाई उनकी माली हालत अच्छी थी, लड़की का बाप डरता था कि मैं उनकी बेटी को खुश नहीं रख सकूंगा।
यहाँ से वापस चलो, मुझे नहीं लगता कि बरात अली का ये काम हो सकेगा। इंसान को अपने को इतना छोटा नहीं करना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए कभी।
मेरे ख्याल में इंसान को हर उस चीज से इस्तेनाब करना चाहिए जिससे उसकी इज्जत पर आँच आए, चाहे वो इश्क हो या कोई और।
मैंने एक डायलॉग में पढ़ा है कि जब दो अफराद आपस में लड़ते हैं अगरचे एक दूसरे के नजदीक हों लेकिन चीखते हैं, जानते हो क्यों? इसलिए कि उनके दिल एक दूसरे से दूर होते हैं लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले आहिस्ता बात करते हैं। भाई बारात अली, अगर इंसान इश्क की हकीकत को समझे और खुदा का आशिक बने तो जिंदगी के इन मसाइल में बगैर मुंह खोले खुदा से बात कर सकता है।
जानता हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए?
लेट जाओ बेटी, लाओ ये रुमाल मुझे दो।
माफ़ कीजिए अम्मी।
ये कैसी बातें कर रही हो बेटी, जल्दी ठीक हो जाओगी।
इसकी तबीयत कैसी है?
कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसका जिस्म आग की तरह तप रहा है।
भाई मैं कह देता हूँ, बहस को मैं शुरू करूंगा, मैं ही पहले बात को शुरू करूंगा।
हाँ, यूं बेहतर रहेगा, तुम आसानी से बात कर लेते हो।
जब हम सब बहस में दाखिल होंगे तो किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, तुम फिक्र मत करो।
लेकिन मुझे फिक्र तो है। सलाम अलैकुम।
सलाम।
अरे आतिफा, माफ कीजिएगा, क्या अब्बू घर पर हैं?
हैं, लेकिन अभी वो बाहर जा रहे।
अच्छा, जहमत करके कहें कि दरवाजे पर आ जाएं, मुझे उनसे काम है।
बरात अली साहब, अभी नहीं हो सकता, आप किसी और वक्त आइए।
उनको बुलाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है।
मेरी बहन बीमार है, उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं।
डॉक्टर के पास किस लिए?
उन्हें बुखार है।
अपने अब्बू से कहें कि हम अपने साथ डॉक्टर लाए हैं, उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर हैं, अगरचे डॉक्टरों के लिबास में नहीं है।
हाँ जाओ बता दो जाओ।
अब्बू डॉक्टर आए हैं।
बुखार हुआ है।
घबराओ नहीं। भाई फरीद।
अकबर साहब ये लीजिए।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तकलीफ ना करें, आपको जहमत होगी।
लीजिए बिस्मिल्लाह।
आपने क्यों जहमत उठाई? बहुत बहुत शुक्रिया।
आप लीजिए।
बहुत शुक्रिया आपकी इनायतों का। बस हो गया।
आप भी लीजिए।
शुक्रिया।
आप ठीक हैं इंशाल्लाह?
अल्हम्दुलिल्लाह
खुदा का शुक्र है। वाकई सेहत बड़ी नेमत है।
जी जी ऐसा ही है।
जब तक इंसान बीमार नहीं होता सलामती की कदर नहीं जानता। बरात अली से ही पूछ लें, खुदा से क्या चाहता है, सेहत की सलामती।
क्या बरात अली भी बीमार हो गए थे?
हाँ इत्तेफाक से ये भी बीमार थे, शायद अब भी हों।
नहीं मैं ठीक हूँ, अब कोई बात नहीं है।
तुम्हारी बीमारी क्या थी?
बुखार था।
तो इत्तेफाक से तुम्हें भी बुखार आ गया था?
जी।
अजीब।
आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये वाला बुखार आज का नहीं पुराने ज़माने का है, यहाँ तक कि अबू अली सीना के ज़माने में लोगों को ये वाला बुखार होता था।
अच्छा आप कैसे जानते हैं?
एक किताब है अबू अली सीना की ज़िंदगी के बारे में, इस किताब में एक जवान का किस्सा है जिसे बुखार हो जाता है।
इस किताब का नाम क्या है?
मुझे याद तो नहीं है लेकिन किताब है। फरीद भाई
अभी फरीद साहब बताएंगे।
अर्ज कर रहा था कि जिस नौजवान को बुखार हो जाता है उसे इश्क हो जाता है।
आप चाय लीजिए।
आप चाय लीजिए।
साहब जल्दी बताइए उसकी तबीयत कैसी है?
परेशानी की बात नहीं है, मैंने अभी अपने दोस्त को जो स्पेशलाइजेशन कर रहा है आपकी बेटी की बीमारी की निशानियां बताई। उन्होंने बताया कि उनको मजीद आसतो मात्रेत बीमारी लग गई है।
क्या?
कोई अहम मसला नहीं है, बदन में इन्फेक्शन हुआ है, शायद किसी खाने या फ्रूट से फूड पॉइजनिंग हो गई है। हो सकता है उन्होंने कोई खराब खाना या खराब फल वगैरह खा लिया हो।
नहीं खाना तो वही खाया है जो हम सब ने खाया है।
मैंने अर्ज किया ना, हो सकता है। अलबत्ता मैं ये भी बता दूं कि बीमार की नफसियाती हालत भी बहुत अहम होती है।
ये नफसियाती हालात क्या होते हैं डॉक्टर साहब?
ये बात आपको खुद उनसे पूछनी पड़ेगी। मैंने गोलियां लिख दी हैं, हर 8 घंटे पे एक टैबलेट देनी पड़ेगी। इंजेक्शन भी लिख दिया है, दिन में एक बार लेना पड़ेगा। और टेस्ट भी लिख दिए हैं, जब रिजल्ट आ जाए तो आप मुझे दिखा दीजिएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर कोई हुक्म ना हो तो हम चलते हैं।
आपका करम है।
भाई फरीद असली बात तो रही गई।
चलो वो किसी और वक्त सही।
जो भी बात है आप फरमाइए, मैं सुन रहा
हूं। नहीं नहीं कोई खास बात नहीं है, फिर किसी और मौके पर जहमत दूंगा। चलो
कहाँ जा रहे हैं? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अभी आपने चाय भी नहीं पी।
इंशाल्लाह हम आपकी खुशियों में शरीक होंगे।
अभी कहाँ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं।
या अल्लाह।
आप तशरीफ रखिए, जहमत ना करें।
नहीं मैं ठीक हूँ।
माफ कीजिएगा, इजाजत।
माफ कीजिएगा, खुदा
हाफिज़। इजाजत दीजिए, खुदा
हाफिज़। खुदा सलामत रखे आप लोगों को। खुदा हाफिज़ हो नासिर।
सैयद जमाल ये तुमने क्या कहा?
मैंने आखिर कहा क्या?
मेरे दोस्त अकबर साहब को अपनी बेटी की फिक्र थी और तुम इश्को मोहब्बत की बातें कर रहे थे।
तो क्या हम इसी काम के लिए यहाँ नहीं आए थे?
अब मैं ये सोच रहा हूँ कि काश तुम्हारा मिंबर पर जाने का डर खत्म ना होता। हर बात को कहने की अपनी एक जगह होती है मेरे भाई।
कोई बात नहीं है मुस्लिम साहब, हम अच्छे टाइम पर पहुँचे, उनकी तबीयत वाकई ख़राब।
तुम्हारे ख्याल में डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत?
नहीं नहीं फिक्र ना करें, घर में अच्छे से ख्याल रखेंगे तो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह।
तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं?
कमरे में हैं।
और अब्बू घर पे हैं?
नहीं दुकान पर हैं।
कब आएंगे?
मुझे लगता है 1-2 घंटे बाद।
सलाम।
सलाम, तुम ठीक हो?
अच्छा हुआ जो तुम आ गई।
तुम जरा हमें तन्हा छोड़ोगे?
क्या आप कॉफ़ी पियेंगी?
नहीं बहुत शुक्रिया।
कुछ हुआ है क्या?
मैंने एक कतई फैसला किया है। मैं अब्बू के घर जोहरे आश्रा की मजलिस करना चाहती हूँ, उस वक्त की तरह जब अब्बू जिंदा थे।
ये तो बड़ी खुशी की बात है।
मैं चाहती हूँ कि शहीदी साहब को मजलिस पढ़ने के लिए बुलाऊं। शहर की सब अंजुमनों को भी हाजी हबीब अंसारी के घर बुलाना चाहती हूँ।
मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने ऐसा इरादा किया है।
तुम्हारी बात सही है, हम उन्हीं हाजी हबीब के बच्चे हैं, हमें उन्हीं के रास्ते को जारी रखना चाहिए।
ये तो बहुत अच्छी बात है।
सिर्फ तुम्हारा राजी होना जरूरी है।
मैं राजी रहूं? मैं तो खुदा से यही चाहती हूँ।
यहाँ तक कि अगर तुम्हारा शौहर मुखालिफ हो।
दाऊद क्यों?
किसी भी वजह से हो वो नहीं जानती, लेकिन अगर मुखालफत करेंगे तो तुम अपनी बात पर डटी रहोगी?
मैं अपनी बात पर अड़ी रहूंगी।
जानती हूँ उनसे प्यार करती हो और एक उम्र उनके साथ जिंदगी गुजारी है।
पड़ोसी है, मैं गाड़ी हटा कर आता हूँ।
मैं चाहती हूँ कि तुम आखिर तक अपनी बात पे डटी रहो।
ठीक है।
और जब तक उन्होंने तुमसे कुछ ना पूछा तुम कुछ न कहना।
बताओगी नहीं क्या हुआ है?
जोहरा, मुझे तुम्हारे वादे पे इत्मीनान है, अपना वादा नहीं तोड़ोगी ना?
तुम इत्मीनान रखो।
अगर तुम मुझसे मिलना चाहती थी तो घर क्यों नहीं आई?
यहां और गुलशन आबाद की जमीनों की कीमत कितनी है?
मुझे क्या मालूम।
वैसे तकरीबन कितनी होगी?
प्रॉपर्टी डीलर को लाना पड़ेगा।
अगर आप इसी वक्त मुझे इसकी नकद कीमत देना चाहें तो कितनी देंगे?
देखो, मेरे पास तो इस वक्त पैसा है नहीं, लेकिन इस बारे में मैं सोचूंगा। अगर वाकई में बेचना चाहती हो तो मैं डीलर को लाऊंगा, उसने जितनी कीमत बताई मैं 30% कम पर खरीदूंगा, लेकिन नकद खरीदूंगा। बेचोगी?
एक शर्त पर।
देखो, मैं इसलिए खरीद रहा हूं कि तुम्हारा काम हल हो जाए। किस लिए सोच रही हो कि मुझे इन जमीनों से प्यार है जो मेरे लिए शर्त रख रही हो?
क्योंकि अब तक आपने जो भी किया है इन जमीनों को हासिल करने के लिए किया है।
ये तुम क्या कह रही हो हुदा साहिबा?
इतने साल बाद मुझे फोन किया कि मैं ईरान आ जाऊं?
मैंने सोचा कि तुम्हारी माँ गुजर गई है और तुम्हारे दिल में जरा सी मोहब्बत रह गई होगी।
एन, मेरे जाने के वक्त मेरी माँ का निकाहनामा मुझे दिखाते हैं और मुझे हाजी महदवी के पास ले जाते हैं ताकि शरई दलील मौजूद रहे। ये और इस तरह के हजार कामों की वजह और क्या हो सकती है?
तुम जेनेटिक मेडिकल पढ़ने की बजाय सुराग रसा क्यों नहीं बन गई? कैसे ख्यालात रखती हो?
क्या मोहम्मद हुसैन को मजीद के फोन का किस्सा भी एक ख्याल है?
जाओ, यह किस्सा किसी और को सुनाना।
फिक्र ना करें, ऐसी तफसील से सुनाऊंगी कि सबको यकीन आ जाएगा।
तुम चाहती क्या हो?
मैं आपको मोहलत देना चाहती हूँ। मोहम्मद हुसैन पर लगाए गए इल्जाम को खत्म करेंगे और उसे जेल से निकालेंगे और तमाम कर्ज खाहों का पूरा पैसा अदा करेंगे। आप जानते हैं कि इतने अरसे के बाद हमारे घर जोहरे आशूरा की मजलिस रखी जाए तो सब लोग शिरकत करेंगे। मैं वहीं पर ऐलान करूंगी कि इस जगह को और गुलशन आबाद के बागात को वक्फ करती हूँ। इस तरह उन जमीनों की हसरत कयामत तक आपके दिल में रह जाएगी। जोहरे आशूरा तक आपको मोहलत देती हूँ।
اینجا برای سنوشتن هوا کمه